President Monson, we love you.
President Monson, हम आपसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जो आपने आज बताया मिशनरीज के बारे में और फिर टेंपल्स के विषय में. मिशनरीज के द्वारा कई आशीर्वाद हमें मिलेंगे और सभी को जो आगे आएंगे. मेरे प्रिय भाई और बहनों और दोस्तों, हम सब मरणशील है. मैं आशा करता हूं कि ये हमारे लिए अचंभव नहीं है. हम में से कोई भी बहुत दिन तक नहीं धरती पर होगा. हमारे पास धरती पर कुछ अनमोल वर्ष होते हैं जो आनंद दृष्टि में पलक झपकते जैसे भी नहीं होगी, और फिर हम विदा लेते हैं. हमारे आत्मा उस परिवार के पास ले जाते हैं जिसने हमें जीवन दिया. हमारे शरीर कब्र में चले जाते हैं और हम धन दुनिया के सम्मानों को पीछे छोड़ देते हैं और हम उपस्थिति की दृष्टि मंजिल पर जाते हैं. जब हम जवान होते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन हमेशा जिएंगे. हम सोचते हैं हमारे जीवन के कई दिन बाकी है और भविष्य के एक लंबे रास्ते की तरह दिखलाती है जो कभी खत्म नहीं होगा. हालांकि हम जितने बूढ़े होते हैं, उतना हम पीछे देखकर आश्चर्य करते हैं कि रास्ते कितने छोटा है. हम सोचते हैं कैसे वर्ष में इतनी जल्दी गुजर जाते हैं. हम अपने बनाए चुनाने के बारे में सोचते हैं. इस द्वारा हम कई मीठे पल याद करते हैं जो हमारे आत्मा को संतुष्टि देती है और दिलों को आनंद. मगर हम अपने पछतावा को भी याद करते हैं जो सब जो हम वापस जाकर बदल जाते हैं. एक नर्स जो बहुत बीमार लोगों को देखभाल करती है कहती है कि वो अक्सर अपने मरीजों से ये सरल सवाल पूछती है जब वो इस जवान को छोड़ने की तैयारी करते हैं, क्या आपको कोई पछतावा नहीं, वो पूछती है. मनुष्यता के आखिरी दिन के इतने करीब होना अक्सर समझ को साफ करता है और पहचान और दृष्टि प्रदान करता है. इसलिए जब इन लोगों से पछतावा के विषय में पूछा जाता है वे अपने दिल की बातें बताते हैं. वो बतलाते हैं कौन सी चीज़ों को वो बदलना चाहेंगे अगर सिर्फ वो पिछले दिनों में जा सकते हैं. जब मैंने उनके जवाब से गुबारे में सोचा, मुझे आश्चर्य हुआ कि कई यीशु मसीह के सुसमाचार के बुनियादों से धर्म हमारे जीवन को सदा के लिए घुमा देते हैं अगर हम उसे आजमाएं. सुसमाचार के सिद्धांत के बारे में कुछ गुप्त नहीं है. हमने उसके बारे में धर्मशास्त्र में अध्याय दिया है. हमें उन्हें रविवार कक्षा में चर्चा किया है और हमने कई बार और मार्च में सुना है. ये दिव्य सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत और साफ है. वो सुंदर घिरे और शक्तिशाली है और वो हमें विश्वास में पछतावा से बचाएंगे. मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा समय बिता सकें. शायद ज़्यादातर मरने वाले मरीजों ने कहता है वो प्रियजनों के साथ समय बिताने चाहते हैं. वो ज़्यादातर पुरुष ये दुखता गाते हैं. उन्हें अपने जीवन का ज़्यादातर अपने आप कम पर बिताने का पछतावा करते हैं. कई लोग उन खास यादों से दूर थे जो परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मिलता है. वो अपने चाहतों से के साथ गहरा संबंध बनाने में चूक जाते हैं. क्या ये सच नहीं है कि हम अक्सर इतना व्यस्त हो जाते हैं और कितना दुख पहुंचता है ये कहने से कि हम व्यस्त होना एक सम्मान की समझते हैं, जैसे व्यस्त होना खुद में एक पदवी या है बढ़िया जिंदगी कक्षे. मैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह और उनकी छोटी जिंदगी जो गैलिली के जेरूशलम और जेरूशलम के लोगों के बीच बीती थी बारे में सोचता हूँ. मैंने कल्पना करने की कोशिश की है उस सभाओं या जरूरी कामनाओं जो एक साथ करना जल्दी जल्दी ताकि वो खत्म कर सके. मुझे वो नहीं दिखता, बल्कि मुझे दयालु और परवाह करने वाले परमेश्वर का पुत्र दिखलाता है, जो हर दिन एक लक्ष्य के साथ जीता है। जब वो किसी से बातें करता है, वो आवश्यक और प्यार महसूस करता है। वो मिलने वाले लोगों के आनंद कीमत को जानते हैं। वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें सहायता करते हैं, वो उन्हें आगे बढ़ाते हैं और चंगा करते हैं। वो उन्हें अपने समय का कीमती उपहार देते हैं। हमारे समय समय में आसान है कि किसी के साथ समय बीतना कितना दूर होता है। कंप्यूटर के माउस को दबा कर हम हजारों दोस्तों से जुड़ते हैं जाते जो पास नहीं पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ हो सकती है, और वो खासकर लाभदायक हो सकता जब हम अपने परिजनों के करीब नहीं होते। मेरी पत्नी और मैं करीबी परिवार सदस्य से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये कैसा होता है। हालांकि मैं विश्वास करता हूँ कि हम सही दिशा में नहीं रह जाते हैं निजी और सामाजिक रूप से, जबकि सबसे जाना माना तरीका है हम परिवार या दोस्तों से संपर्क करते हैं। वो मजाक के चित्र भेजते हैं, मामूली बातें कर लिखकर, या उन्हें इंटरनेट के किसी वेबसाइट का भी पता भेजते हैं। मुझे लगता है इस तरह की गतिविधि का कोई स्वीकृत माहौल है, मगर हम कितना समय उस पर बिता सकते हैं। अगर हम खुद को और अपना समय और आवश्यक लोगों को नहीं देते, एक दिन हम पूछेंगे, पछताएंगे, और हम इरादा करें प्रियजनों को अच्छी तरह देखने का, उनके साथ रहकर उनके साथ अद्भुत समय बिताकर और बहुमूल्य यादें बटोरना। मैं इच्छा करता हूँ कि मैंने अपनी संभावना को पा लेता। एक और पछतावा लोगों को ने करता है कि वो वैसा व्यक्ति नहीं हो बन पाते जो उन्हें महसूस किया जाता है उन्हें बनना चाहिए। जब वो अपने जीवन को मुड़कर देखते, वे जान पाते हैं उन्होंने अपनी संभलता नहीं पाई कि कई चीज़ें नहीं हुई। मैं ये यहाँ सफलता पाने की बात नहीं करता अपनी पेशा में। वो सफलता चाहे कितनी बड़ी देखते धरती पर बहुत छोटा होता है, और महान आनंद तक यात्रा में हो हम जान लेते वाले हैं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति परमेश्वर को, जो कि परमेश्वर जो हमें बनते देखना चाहता है। हम इस दुनिया में आते हैं, जैसे कवि ने कहा, फैलते हुए महिमा का के बादल एक फैले के जीवन से। हमारे स्वर पिता ने हमारे सही संभावना को देखता है। वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है। वो हमें हमारे जीवन के द्वारा प्रोत्साहित करता है अपनी रचना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक धार्मिक जीवन जीना और उनके उपस्थिति में लौटना। क्यों फिर हम इतना समय और शक्ति बिताते हैं और चीज़ों में जो थोड़े समय का है इतना अनावश्यक और इतना हल्का? क्या हम मूर्खता को देखने से इनकार करते हैं जो मामूली और अस्थाई है? क्या हमारे लिए बुद्धिमानी नहीं होगी हमारे स्वर्ग पिता में ध्यान इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना मूर्छा लग सके और जहाँ चोर ना आ सके? हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? उद्धारकर्ता के उद्धार पर चलने से, उनके सीख को जीवन में आजमाने से, और सच में परमेश्वर और मनुष्य से प्रेम करके। हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हम चलापन को हिचकता हुए पालन करें, चिंता करना कि कितना देखकर और शिकायत करना जिम्मेदारी के बारे में। जानबाज समझदार को जीने की आती है। हमें उस लड़के की तरह नहीं होना चाहिए जो अपना अनुगत पाने में डाला और कहा करते वो तैरना नहीं गया, क्योंकि हम स्वर्ग के पिता पुत्र और पुत्रिया है। हम बहुत ज्यादा करने के योग्य है। इसके लिए अच्छे इरादे से काफ़ी नहीं है, हमें करना चाहिए और ज़्यादा आवश्यक है हमें वो बनना चाहिए जो स्वर्ग पिता की इच्छा है। सुसमाचार की अपनी गवाही को घोषणा करना अच्छा है, मगर पुनाश्चर्य पर सुसमाचार का जीवित उदाहरण बनना बेहतर है। वादों के प्रति ज़्यादा विश्वासी होने की इच्छा करना अच्छा है। ठीक से ज्ञान से शब्द का पालन करना, अपना दसवां हिस्सा और भेंट को भरना और ज़रूरतमंद की सेवा करना बेहतर है। बतलाना कि हम परिवार प्रार्थना धर्मशास्त्र अध्ययन और लाभकारी परिवार गतिविधि में ज़्यादा समय बिताते अच्छा है, मगर इन चीज़ों को करने से स्वर्ग के आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं आएंगे। चेलापन पवित्र और खुशहाली को पाने की कोशिश है। ये मार्ग खुद को बेहतर और खुशहाल बनाने का है। हम उद्धारकर्ता की बातें मानने की ठान लेने की पूरी मेहनत करें, वो इंसान बने जिसके लिए हमें बनाया जाता है। हम पवित्र आत्मा के प्रेरणा को सुने और पालन करें। जब हम ऐसा करेंगे, स्वर्ग पिता की हमारे लिए उन बातों को प्राप्त करें जो हमें खुद नहीं जानते, हमारा आगे होगा और वो हमें दिखलाएगा। जितना हम खुद को पवित्र और खुशहाली में व्यस्त रखते हैं, उतना कम संभावना है हम पछतावा के मार्ग पर जाएंगे। जितना हम उद्धारकर्ता के अनुग्रह पर निर्भर होंगे, उतना ही हम महसूस करेंगे जीवन की यात्रा में कि हम स्वर्ग के पिता के चुने हुए मार्ग पर है। मैं इच्छा करता हूँ कि मैंने खुद को खुश रहने दिया है। एक और पछतावा मरने वालों का होता है, आश्चर्य है। उन्होंने इच्छा किया है कि उन्होंने खुद को खुश रहना दिया है। अक्सर हम इस दुख में पड़ते जाते हैं कि हमारे पहुंच से थोड़ा आगे कुछ है जो हमें खुश करेगा। एक बेहतर परिवार परिस्थिति, एक बेहतर आर्थिक स्थिति या एक मुसीबत का अंत। हम जितने बूढ़े होते हैं, हम उतना पीछे मुड़कर देखते हैं और जान पाते हैं कि भारी बाहरी परिस्थितियाँ आवश्यक नहीं या उससे हमारी खुशहाली तय नहीं होती। हम आवश्यक है, हम अपना खुशहाली तय करते हैं। तुम और मैं आखिर में खुशहाली की जिम्मेदारी रहेंगे। मेरी पत्नी हेरेत और मैं बाइसिकल चलाना पसंद करते हैं, बाहर जाकर आनंद लेते हैं। कुछ रास्ते जिन पर हम चलना पसंद करते हैं, मगर नहीं देखते कि हम कितने दूर जाएंगे या कितनी तेज जाएंगे। हालांकि कभी कभी मैं सोचता हूँ हमें मुकाबला करना चाहिए। हमारा समय या गति बेहतर हो सकता है अगर हम थोड़ी और कोशिश करें, थोड़ा और मेहनत करें। कभी कभी मैं इस इरादे को अपनी पत्नी से कहने की गलती कर देता हूँ। इसका बर्ताव ऐसी टिप्पणियों के लिए बहुत दयालु है, साफ और सीधा होता है। वो मुस्कुराती और कहती है, डेटर, ये कोई मुकाबला नहीं, ये एक सफर है, इस पल का आनंद लो। वो कितनी सही कहती है। जीवन में कभी कभी हम इतना ध्यान समाप्ति पर देते हैं कि हम सफर का आनंद नहीं ले पाते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ साइकिल चलने नहीं जाता क्योंकि मुझे समाप्त करने की जल्दी है। मैं जाता हूँ कि मैं उसके साथ समय बिता सकूं। क्या मूर्खता होगी नहीं मीठे आनंद में अनुभव को देना लेना, क्योंकि हम लगातार उस पल इंतजार करते रहे जब वो समाप्त होगा। क्या हम सुंदर संगीत को सुनते हैं समय इंतजार करते कि वो कब खत्म हो जाए? नहीं, हम हर सुर और शब्द को सुनते हैं और समझते हैं। क्या हम प्रार्थना बोलते हैं सिर्फ आमेन या अंत पर ध्यान देते हैं? बिल्कुल नहीं। हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम स्वर्ग के पिता के करीब होए, उनके आनंद को पाने और प्रेम को महसूस करने के लिए। हमें खुश रहने का इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कि हम आगे जाकर हमें मिलेंगे। खुशहाली अभी ही मिल सकती है। जीवन का आभार सिर्फ पुराने बातों की सोचते से नहीं मिलती। कवि ने लिखा है, आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हो। भाई और बहनों, चाहे जो भी हमारी परिस्थिति हो, जो भी हमारे चेतावनी हो, चुनौतियाँ हो, मुसीबत हो, हर दिन में कुछ होता है गले लगाने और याद करने के लिए। हर दिन में कुछ होता है जो अभर और आनंद लाता है। शायद हमें अपने आँख से कम और अपने दिल से ज़्यादा देखना चाहिए। मुझे ये कहावत पसंद है, एक व्यक्ति दिल से साफ देखता है, ज़रूरी बातें आँखों को नहीं देखती। हमें आज्ञा दिए गए हैं हर एक बात में कृतज्ञता प्रकट करते हैं। जो तो क्या बेहतर अपने आँखों और दिल से देखने की छोटी सी आभारी। प्रभु ने वादा किया है, वो जो सब कुछ पता है कृतज्ञता को शानदार किया जाएगा और इस धरती की चीज़ों उन्हें ज़्यादा मिलेगी ज़्यादा से। भाई और बहनों, हमारे स्वर्ग पिता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है। उनकी उदारता का मुक्त का योजना पुनस्तुति के समाचार और मरणशील यात्रा की सिद्धार्थें, क्या आनंद मनाने के हमारे पास कारण नहीं है? इसलिए हमें खुश रहना का समाधान करना चाहिए। समाधान से संबंधित, एक दिन हम जरूर मुड़कर दूसरे और जाएंगे। एक दिन हम अपने जीवन को देखेंगे और सोचेंगे कि क्या हम बेहतर हो सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं, या अपने समय बुद्धिमान से इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन के कुछ गहरे पछतावों से बचने के लिए हम बुद्धिमान होंगे। आज कुछ समाधान बनाकर इसलिए आओ हम ज़्यादा समय प्रियजनों के साथ बिताएं, मन लगाकर परमेश्वर के बातों को पालन करें, खुशियां ढूंढें की ठान लें परिणाम की परवाह से। ये मेरी गवाही है कि उद्धारकर्ता को हम पालन कर सकते हैं और हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगर हम अपने पाप या गलतियों को समझेंगे और पश्चाताप करें, हम समय में वापस जाकर आने अपने गलती को सुधार नहीं सकते, लेकिन हम पश्चाताप कर सकते हैं। उद्धारकर्ता हमारे आंखों से सब आंसू पोंछ देंगे और वो पाप को बोझ को दूर कर देंगे। उनका प्रायश्चित हमें मौका देता है और इस इरादे के साथ कि हम इच्छा करेंगे और बेहतर बनेंगे। हाँ, ये जीवन तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। हमारे दिन जल्द से धुंधले हो रहे हैं। मृत्यु कभी कभी दीवारी दिखती है, परंतु हमारा आत्मा जीवित रहता है और हम एक दिन अपने पूर्ण जीवित शरीर से छुड़कर अनंत महिमा प्राप्त करेंगे। और मैं ये दिल से गवाही देता हूँ कि दयालु मसीह के कारण हम सब एक बार फिर हमेशा के लिए जीवित होंगे। हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के कारण हम एक दिन सही मानने से बात के मतलब को समझेंगे और खुश होंगे। मृत्यु की पीड़ा मसीह में लीन हो जाती है। परमेश्वर की बेटे और बेटियां के हैसियत को हमारे देवता लक्ष्य को मार्ग में आएंगे। भाई और बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, हमें इस मार्ग पर आज ही चलना शुरू करना है। हम किसी एक दिन को भी गवा नहीं सकते। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम मृत्यु आने के इंतजार में जीवन को सही तरीके से जीना ना सीखे। यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन।